Hold fast to dreams, for if dreams die, life is a broken winged bird that cannot fly. जी हाँ, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, पर उन सब के बीच भी अपने सपनों को जिंदा रखकर जीवन को आसान और जीवंत बनाया जा सकता है। ये अलग बात है कि कई बार हालात और जिम्मेदारियों के तले हमारे सपने दब जाते हैं, पर वे मरते नहीं। समय समय पर खुद को टटोलते रहना हमारे धुंधले पड़े सपनों को जीवित रखता है। इसलिए श्रोताओं, सपनों का देखना कभी ना छोड़ें। और शगुन, इसका जीता जाता उदाहरण है T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत की जीत।
एब्सोल्युटली।
इसी के साथ आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज की इस खूबसूरत सुबह में मैं आपके साथ हूं आकर्षता सिंह, और मेरे साथ है मेरी को होस्ट शगुन। अ वेरी गुड मॉर्निंग शगुन।
A very good morning to you and to all the listeners who are tuned into Akashwani FM Gold on 100.1 megahertz and the Akashwani network. So it's that time in the morning when we bring you our daily news magazine program, Aaj Savere, wherein we share the latest in national and international news, metro city updates, where we'll tell you about what's happening in your city, as well as some historical information related to this day, that is 4th of July and today. It's all about rain and drizzle and the T20 World Cup winning team who braved the weather, quite literally, and are back with the trophy. That's why this day is many things rolled into one, so turn up the volume, people, and be with us for the next half an hour, roughly. So, Akarshita, let us begin with the headlines.
Ji. T20 क्रिकेट विश्व कप विजेता भारतीय टीम आज बारबाडोस से दिल्ली पहुंच गई है। तूफान बेरिल के कारण भारतीय दल की रवानगी में देरी हुई है। विजयी टीम के स्वागत के लिए क्रिकेट प्रशंसकों की भारी भीड़ दिल्ली हवाई अड्डे पर देखने को मिली। मुंबई रवाना होने से पहले भारतीय दल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात करेगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के सचिव जय शाह ने बताया कि मुंबई में विजयी टीम आज शाम एक ओपन बस रोड शो में हिस्सा लेगी। विजय जुलूस शाम 5 से 7 बजे के बीच नरीमन पॉइंट से वानखेड़े स्टेडियम तक निकाला जाएगा। इसके बाद वानखेड़े स्टेडियम में एक सम्मान समारोह होगा, जहां भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड विजेता टीम को पुरस्कार राशि प्रदान करेगा।
And Akarshita, large number of cricket fans are expected to gather there in the ceremony. We have been waiting for a long time, right?
Yeah, that's right.
Yeah, we are looking forward to it. Prime Minister Narendra Modi has reiterated that the government is continuously making efforts to ease the situation in Manipur. Replying to the motion of thanks on President Draupadi Murmu's address to the joint sitting of Parliament in Rajya Sabha, the Prime Minister showed that the central and state governments are in discussion with all the stakeholders to ensure peace and cordiality in Manipur. He highlighted that the Home Minister himself led the efforts of peace from the front by being in Manipur. Mr. Modi said that the incidents of violence in Manipur are on a continuous downward trajectory. During his reply in the Rajya Sabha, the Prime Minister also expressed concern about the difficult flood situation in Manipur currently. He informed that two companies of NDRF are deployed for the flood relief work and the central government is closely working with the state government in relief efforts.
प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को संविधान का सबसे बड़ा विरोधी बताया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि संविधान केवल अनुच्छेदों का संकलन नहीं है, बल्कि इसकी भावना और शब्द सरकार के लिए मूल्यवान हैं। प्रधानमंत्री ने बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर के योगदान की प्रशंसा करते हुए कहा कि संविधान 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। उन्होंने संविधान दिवस मनाने का विरोध करने वालों पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोगों का त्यौहार बन गया है।
The Indian Army has issued clarification on emoluments to Agniveer Ajay Kumar. In a social media post, the Army said, out of the total amount due, family of Agniveer Vijay has already been paid 98,39,000 rupees. It said ex gratia and other benefits amounting to approximately 67 lakh rupees as applicable according to the provisions of the Agniveer scheme will be paid on final account settlement shortly post due police verification. The total amount will be around 1 crore 65 lakh rupees. The army has re-emphasized that emoluments due to a fallen hero are paid expeditiously to the next of kin of departed soldiers, including Agniveers. The Indian Army clarification came in view of certain posts circulating on social media platforms that compensation has not been paid to the next of kin of Agniveer Ajay Kumar, who lost his life in the line of duty.
बिहार में राज्य स्वास्थ्य विभाग ने चिकित्सा विद्यार्थियों को हिंदी माध्यम से एमबीबीएस पाठ्यक्रम की पेशकश करने का निर्णय लिया है। यह सुविधा 10 राज्य सरकार और 2 केंद्र सरकार द्वारा संचालित संस्थानों सहित बिहार में स्थित सभी 21 चिकित्सा महाविद्यालयों में उपलब्ध होगी। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि इसे इस वर्ष से शुरू होने वाले आगामी शैक्षणिक सत्र से लागू किया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा एवं मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय युवाओं के भविष्य को लेकर हुआ है। अब बिहार में हिंदी भाषा में पढ़ाई करने वाले बच्चे भी मेडिकल की पढ़ाई कर सकते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर अब हिंदी की भाषा की पढ़ाई वाले लड़के भी बन सकते हैं और इससे जो बिहार के हमारे युवा हैं वो युवा जो हिंदी भाषा बेहतर तरीके से बोलते और समझते हैं वो अब हिंदी भाषा में भी चाहे तो पढ़ाई करके डॉक्टर बन सकते हैं और ये इसी सत्र से ये प्रारंभ हो रहा है।
The appointment committee of the cabinet ACC has appointed Dr. B. N. Gangadhar as the chairperson of the National Medical Commission. Earlier, he was the president of the Medical Assessment and Rating Board. The director of Sri Chitra Thirunul Institute for Medical Sciences and Technology, Thiruvananthapuram, Dr. Sanjay Bihari, has been appointed as the president of the Medical Assessment and Rating Board. Their appointments are for a period of 4 years until they attain the age of 70 years.
असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य के 29 जिलों में 16 लाख से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान यहां बाढ़ से 8 लोगों की जान गई है, जिससे मरने वालों की संख्या बढ़कर 46 हो गई है, जबकि 3 व्यक्ति अभी भी लापता हैं। राज्य में फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। बाढ़ के पानी से कई सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की 178 वन चौकी पानी में डूब गई है। बचाव और राहत कार्यों के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल की टीमों को तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिला आयुक्तों के साथ बात कर बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की और बचाव और राहत कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया है।
In Uttarakhand, under the Aspirational District Program, Sampurnata Abhiyan is starting today in the Haridwar and Udham Singh Nagar districts. Along with this, Sampurnata Abhiyan will also start in 6 blocks of the state under the Aspirational Block Program.
मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों के बीच देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में विभिन्न स्थानों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 5 दिनों में केरल, लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक, गोवा, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, तटीय आंध्र प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने रविवार तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी मूसलाधार बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है।
Another batch of 5,696 Amarnath pilgrims left the Yatri Nivas base camp in Bhagwati Nagar in Jammu this morning for Kashmir Valley amid tight security in a cavalcade of 219 vehicles. Of these, 1,591 males, 360 females, 5 children, 64 sadhus and 8 sadhvis left for Baltal base camp, whereas 2,896 males, 651 females, 5 children, 103 sadhus and 13 sadhvis left for Pehelgam base camp. From the 2 base camps in Valley, they will proceed towards the holy cave shrine in the Kashmir Himalayas.
अमर से पूछे उमा के स्वर निकल पड़े उमा।
सरकार ने कहा है कि स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत देश में 100 शहरों में 1,44,000 करोड़ रुपए से अधिक की कुल परियोजनाओं का 90% काम पूरा कर लिया गया है।
Millions of voters in United Kingdom are set to cast ballots in the crucial general elections today as the nation prepares to usher in a new prime minister. The voting will begin at 12:30 p.m. Indian Standard Time and will continue till 3:30 a.m. tomorrow. As soon as the voting finishes, the process of counting of votes will begin to decide the next prime minister of the country. In late May, UK Prime Minister Rishi Sunak had announced a snap general election in a statement outside Downing Street on a rain-soaked day as his Conservative Party was facing an uphill struggle to extend its 14 years in power.
भारत का कोयला उत्पादन जून 2024 में 14.5% की जोरदार वृद्धि के साथ 84.63 मिलियन टन हो गया है। पहले इसका उत्पादन संगत अवधि में 73.92 बिलियन डॉलर था।
So now let's update you with some sports news. In Wimbledon tennis, India's Rohan Bopanna and his Australian companion Matthew Ebden kicked off their campaign with a victory over an old Dutch duo, Sander Ahrens and Robin Haase, 7-5, 6-4 in the first round of men's doubles in London last night. Both the sets began with both pairs matching each other point for point, but second seeds Indian-Australian duo held their nerves to secure a victory and made it to the next round. They will face German pair of Henrik Lebens and Konstantin Frentzen.
भारतीय जनता पार्टी के वयोवृद्ध नेता लाल कृष्ण आडवाणी को कल शाम दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी हालत स्थिर है और वे डॉक्टरों की निगरानी में हैं। पिछले सप्ताह तबियत बिगड़ने पर उन्हें दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में भर्ती कराया गया था। और श्रोताओं, अब आज सवेरे में प्रमुख महानगरों से जुड़ी प्रमुख खबरें, आइए जानते हैं चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद की खबरें शगुन से।
यस आकर्षिता, आई बिगिन विद चेन्नई। Infosys Foundation, the philanthropic arm of Infosys, has signed a memorandum of understanding with ICT Academy of Tamil Nadu to upskill youngsters in engineering, arts and science courses in tier 2 and tier 3 cities across the country. This aims at upskilling students for career development and helping them with placement, Infosys Foundation said. 48,000 students will be trained over a period of 3 years in IT, banking, financial services, retail, e-commerce, logistics, knowledge process outsourcing and soft skills. Very good news for the students. The foundation aims to help establish centers of excellence for women and youth empowerment in 450 colleges with grants of around rupees 33 crore. These centers will serve as hubs for both online and offline skill development and training. More news from Chennai only. The Union Ministry of Defence has signed a memorandum of understanding to establish 3 testing facilities in Tamil Nadu under the Defence Industrial Corridor. 1 testing facility each will be established in the domains of unmanned aerial system, electronic warfare and electro-optics. The MOU was exchanged between senior officials of the Ministry of Defence and Tamil Nadu Industrial Development Corporation in the presence of Defence Secretary Giridhar Aramane. The testing facilities are being established through the Defence Testing Infrastructure Scheme launched in 2020 to set up testing facilities and promote indigenous defence production and reducing military equipment imports. On to Bengaluru now. ICAR, Indian Institute of Horticultural Research in Hesarghatta near Bengaluru, signed a memorandum of agreement with National Seeds Corporation. IIHR Director Dr. Tusar Kanti Behera exchanged the MOA with M. Ahmed Raza, Regional Manager, National Seeds Corporation. The agreement allows the corporation to carry out large-scale multiplication of quality and disease-resistant varieties and hybrids of horticultural crops developed by ICAR-IIHR scientists. It will enable supply of quality seeds to the farmers' fields throughout the country. Initially, the agreement is valid for 1 year and further extendable with mutual consent. The scientists of IIHR and officials of NSC were present during the occasion.
और श्रोताओं अब आइए जानते हैं
But before that,
before
on to Hyderabad now, where in Telangana State Textiles and Agriculture Minister T. Nageswar Rao has assured that the government was taking steps to ensure long-term benefits of handloom workers. He assured to this effect the union leaders of handloom workers who met him seeking resolution of their problems. The ministry informed in a release that the union sought purchase of stocks available with the primary handloom cooperative societies. They sought display of clothes in the showrooms along with supplies to different government offices. Among their other demands were continuation of Netanna Bima, Weaver's Insurance, 25 Paise Interest Scheme, subsidy on yarn and worker-to-owner schemes along with clearance of pending transactions. They also sought implementation of insurance scheme for handloom workers who are more than 59 years old, waiver of workers' personal loans, holding of elections to primary handloom cooperative societies, opening of TSCO, Telangana State Handloom Workers Cooperative Society Limited, showrooms in Andhra Pradesh and introduction of saris and other schemes. Responding to their request, the minister showed them that all the problems of power looms and hand looms will be addressed. He said orders worth 250 crore rupees have been received from different government departments. The purchases will be done as per a plan to ensure full-time work for the workers. And Akashita, what do we have from Delhi, Mumbai and Kolkata?
जी, तो शुरू करते हैं दिल्ली से. दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 12 जुलाई तक बढ़ा दी है. अदालत ने इसी मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और भारत राष्ट्र समिति की विधायक की कविता की न्यायिक हिरासत भी 25 जुलाई तक बढ़ा दी है. केजरीवाल को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था. वे पहले ही इस मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दे चुके हैं. ये याचिका उच्च न्यायालय में लंबित है. दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कल द्वारका में मोहल्ला बसों के लिए बन रहे इलेक्ट्रिक बस डिपो का निरीक्षण किया. राजधानी में जल्द ही औपचारिक तौर पर मोहल्ला बसें चलनी शुरू हो जाएंगी. परिवहन मंत्री ने अपने बयान में कहा कि मोहल्ला बस योजना शुरू करके दिल्ली सरकार राजधानी वासियों को अंतिम छोर तक संपर्क सेवा प्रदान करना चाहती है ताकि उन्हें आने जाने में कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े. उन्होंने बताया कि 2800 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैले द्वारका डिपो में 22 मोहल्ला बसें पार्क की जा सकेंगी. इसके अलावा द्वारका सेक्टर 2 डिपो में 180 बसें खड़ी की जा सकेंगी. ये डिपो 23,000 से अधिक वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला है. वहीं तीसरा डिपो द्वारका सेक्टर 9 में स्थित है जिसका उपयोग विशेष रूप से पार्किंग के लिए किया जाएगा. दिल्ली सरकार ने वर्ष 2025 तक कुल 2,180 मोहल्ला बसों को चलाने की योजना बनाई है. मोहल्ला बसों की विशेष रूप से दिल्ली के उन क्षेत्रों में चलाया जाएगा जहां सड़क की चौड़ाई सीमित है. राजधानी के भारत मंडपम में आज से प्लास्टिक रिसाइकिलिंग पर वैश्विक सम्मेलन ग्लोबल कॉन्क्लेव ऑन प्लास्टिक रिसाइकिलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी आयोजित किया जाएगा. 4 दिवसीय इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय की सचिव निवेदिता शुक्ला शर्मा करेंगी. सम्मेलन के दौरान भारत सहित कई देशों के पर्यावरण विशेषज्ञ प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक के निपटान और प्लास्टिक से पर्यावरण को होने वाले नुकसान जैसे विषयों पर चर्चा करेंगे. इसके अलावा सम्मेलन में प्रदर्शनी के माध्यम से पर्यावरण सुरक्षा, प्लास्टिक रिसाइकिलिंग टेक्नोलॉजी, स्थायी समाधान और कचरा प्रबंधन के नवीन तरीकों पर भी प्रकाश डाला जाएगा. दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया के माध्यम से रुपए डबल करने का लालच देकर लोगों को ठगने वाले 2 जालसाजों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए दोनों व्यक्ति व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से लोगों को शेयर बाजार में निवेश करने और उच्च लाभ मिलने का लालच देकर ठगते थे. पुलिस उपायुक्त अंकित सिंह ने बताया कि विभाग को शिकायत मिली थी कि आरोपियों ने एक पीड़ित से उच्च लाभ देने के बहाने लगभग 6 लाख रूपये का निवेश करवाया था और केवल 50,000 रूपये वापस किये. पकड़े गए दोनों आरोपी मध्य प्रदेश के निवासी हैं. और अब मुंबई से जुड़ी खबरें. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अधिकारियों को उन अधिकारियों या कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया जो रिश्वत मांगते हैं या जानबूझकर मांझी लड़की बहन योजना के लिए फॉर्म भरने और जमा करने की प्रक्रिया में देरी करते हैं। सीएम शिंदे ने पारदर्शिता बनाए रखने और योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए प्रत्येक जिले के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति का आदेश दिया। केंद्रों पर भीड़भाड़ को देखते हुए राज्य सरकार ने इस योजना के लिए आवेदन भरने की समय सीमा 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा दी है। बृहन मुंबई नगर निगम बीएमसी ने मुंबई के सभी नगर निगम अस्पतालों में मॉनसून से संबंधित बीमारियों के लिए 3000 बिस्तर तैयार किए हैं। बीएमसी ने शहर के अस्पतालों में बुखार के मरीजों के लिए ओपीडी सेवाएं भी शुरू की हैं। नगरपालिका प्रमुख भूषण गगरानी ने सभी विभागों को मॉनसून जनित बीमारियों से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतने के निर्देश दिए हैं। मुंबई में 300 एकड़ भूमि पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मुंबई सेंट्रल पब्लिक पार्क होगा जिसमें महालक्ष्मी रेसकोर्स से 120 एकड़ और मुंबई तटीय सड़क परियोजना से 175 एकड़ जमीन शामिल होगी। वहीं महाराष्ट्र के पालघर जिले में सिकल सेल रोग के निदान और जागरूकता बढ़ाने के लिए जिला स्वास्थ्य विभाग ने सतपति गांव में एक सिकल सेल स्क्रीनिंग शिविर का आयोजन किया। शिविर के दौरान महिलाओं की सिकल सेल बीमारी की जांच की गई, साथ ही गर्भवती महिलाओं के आधार कार्ड अपडेट किए गए और उनका नाम प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत दर्ज किया गया। महिलाओं को सिकल सेल रोग और इस आनुवांशिक स्थिति को रोकने के बारे में शिक्षित किया गया। राज्यपाल डॉ सीवी आनंद बोस ने राज्य सरकार को प्रोटोकॉल तोड़ने के आरोप में दार्जिलिंग जिले के जिला मजिस्ट्रेट और सिलीगुड़ी के पुलिस सुपर के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। राज्यपाल ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को पत्र लिखा था। राज्यपाल ने 2 जुलाई को सिलीगुड़ी का दौरा किया था लेकिन सिलीगुड़ी के डीएम पुलिस अधीक्षक और पुलिस आयुक्त अनुपस्थित थे। वे बागडोगरा हवाई अड्डे पर पहुंचे थे और वहां से उस दिन सिलीगुड़ी राज्य अतिथि गृह गए थे। राज्यपाल ने एक दिन पहले ही अपने उत्तर बंगाल दौरे की सूचना मुख्य सचिव को दी थी। और आइए अब जानते हैं दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम का हाल। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ सामान्य बारिश की संभावना है। आज का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं मुंबई में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और सामान्य बारिश की संभावना है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रिकॉर्ड किया गया जबकि अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। और कोलकाता में आसमान में बादल छाए रहने और बिजली चमकने के साथ बारिश की छींटे पड़ने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री दर्ज किया गया जबकि अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। और आइए अब जानते हैं चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद का मौसम शगुन से।
राइट, टॉकिंग अबाउट चेन्नई सर, विच इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई, द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 30 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम विल बी अराउंड 38 डिग्रीज। Bengaluru is expected to have generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature was 21 degrees Celsius and maximum will be around 29 degrees. Hyderabad is expected to have generally cloudy sky with light rain or drizzle again. The temperature will hover between a minimum of 23 degrees and a maximum of 35 degrees.
और आइए अब जानते हैं कि इतिहास में आज के दिन क्या-क्या हुआ।
Well, going way back in time, in the year 1789, British East India Company signed a treaty with the Nizam of Hyderabad and Peshwa of Pune against Tipu Sultan, King of Mysore, on the understanding that a cavalry of 10,000 would attack Tipu's territory and the conquered area would be divided amongst the three. And in the year 1899, Vishnu Prasad Ranchhore Das Trivedi, famous critic in Gujarati, educationist and author, was born at Umret, Gujarat. And also in the year 1933, Mahatma Gandhi was sentenced to 1 year imprisonment.
और 1914 में बर्दुन का युद्ध समाप्त हुआ था और 1947 में आज ही के दिन ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने भारतीय स्वतंत्रता बिल का प्रस्ताव रखा गया था। वहीं 1996 में रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन पुनः 4 वर्ष हेतु राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। वहीं 1997 में अमेरिकी यान सोजर्नर मंगल ग्रह पर पहुंचा।
Sunil Gavaskar celebrated his 115th test in cricket at Edgbaston in the year 1986. In 1989, Union Deputy Ministers were promoted to the rank of Ministers of State.
और 1998 में जापान ने मंगल ग्रह के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए प्लैनेट बी नामक अपना प्रथम अंतराग्राहिक मिशन भेजा।
In 1991, the fourth test of missile Prithvi was conducted. In 1997, center frees from its control 9 top public sector undertakings, accounting for over rupees 10,000 crore profits annually, to become global giants by providing them full financial and operational autonomy.
और 2008 में लगभग 8 साल बाद चीन की मुख्य भूमि और ताइवान के बीच नियमित सीधी विमान सेवा का पहला विमान ताइवान के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। और अब बात करते हैं उन महान हस्तियों की जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन है। उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक तुम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते। ये पंक्तियां हैं स्वामी विवेकानंद की। आज उनकी पुण्यतिथि है। वे युवा सन्यासी के रूप में भारतीय संस्कृति की सुगंध विदेशों में बिखेरने वाले साहित्य, दर्शन और इतिहास के प्रकांड विद्वान थे। विवेकानंद जी का मूल नाम नरेन्द्रनाथ दत्त था, जो कि आगे चलकर स्वामी विवेकानंद नाम से विख्यात हुआ। युगांतकारी आध्यात्मिक गुरु जिन्होंने हिंदू धर्म को गतिशील तथा व्यवहारिक बनाया और सुदृढ़ सभ्यता के निर्माण के लिए आधुनिक मानस से पश्चिम विज्ञान व भौतिकवाद को भारत की आध्यात्मिक संस्कृति से जोड़ने का आग्रह किया। कलकत्ता के एक कुलीन परिवार में जन्मे नरेन्द्रनाथ चिंतन, भक्ति व तार्किकता, भौतिक और बौद्धिक श्रेष्ठता के साथ साथ संगीत की प्रतिभा के एक विलक्षण सहयोग थे। उनकी भेंट अपने गुरु रामकृष्ण से हुई, जिन्होंने पहले उन्हें विश्वास दिलाया कि ईश्वर वास्तव में है और मनुष्य ईश्वर को पा सकता है। रामकृष्ण ने सर्वव्यापी परम सत्य के रूप में ईश्वर की सर्वोच्च अनुभूति पाने में नरेन्द्र का मार्गदर्शन किया और उन्हें शिक्षा दी कि सेवा कभी दान नहीं बल्कि सारी मानवता में निहित ईश्वर की सचेतन आराधना होनी चाहिए। विवेकानंद ने 1893 में शिकागो धर्म संसद में सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका के संबोधन के साथ विवेकानंद ने जैसे ही अपने भाषण की शुरुआत की थी, वैसे ही 7,000 प्रतिनिधियों ने तालियों के साथ उनका स्वागत किया था। आइए सुनते हैं शिकागो में किए गए उनके भाषण का कुछ अंश।
सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, इट फिल्स माय हार्ट विद जॉय अनस्पीकेबल टू राइज इन रिस्पॉन्स to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the mother of religions. And I thank you in the name of the millions and millions of Hindu people of all classes and sects.
And today we are remembering Marie Curie, physicist and chemist who is remembered for her discovery of radium and polonium and her huge contribution to finding treatments for cancer. She developed methods for the separation of radium for radioactive residues in sufficient quantities to allow for its characterization and the careful study of its properties, therapeutic properties in particular.
और भारत व्यास हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार थे। इनका जन्म 6 जनवरी 1918 को बीकानेर में हुआ था और बचपन से ही इनमें कवि प्रतिभा दिखाने लगी थी और उन्होंने 17 वर्ष की उम्र तक लेखन शुरू कर दिया था। उनका लिखा पहला गीत था आओ वीरो हिलमिल गाएं वंदे मातरम, और आइए सुनते हैं उनका ये गीत।
Today it's the birthday of H.K. Venkatram, who is an Indian classical music violinist. Venkatram has been an active violinist for over 30 years in India and abroad. He's born into a musical family and received his musical training from his illustrious father and guru, Sangeet Kalaratna Professor H.V. Krishnamurti.
और श्रोताओं, अब समय है आपसे विदा लेने का। अनुमति दीजिए आकर्षिता और शगुन को कार्यक्रम कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की, लेकिन आप सुनते रहिए आकाशवाणी गोल्ड एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर।
स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट इज समाचार प्रभात, आर हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 AM। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन एंड हैव अ सुपर्ब डे।
और अगर आप आज सवेरे कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर। इसके साथ ही
नमस्कार।